बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट FM डाउनटाउन, मेरे यानी अमन के साथ। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। आज की कहानी का नाम है ब्लैकमेल। तो सुनिए ये प्यारी सी कहानी। कॉलेज कैंपस में लगे नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़ पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहे थे। कोयल की मीठी कूक, गौरैये का तीखा स्वर और रुक रुक कर आती किसी बेहद सुंदर चिड़िया की आवाज, जिसका नाम मुझे नहीं मालूम था। मैं क्लासरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए इन आवाजों में डूबी थी। बोरिंग लेक्चर काटने का यह मेरा परमानेंट तरीका था। कितना अच्छा होता ना अगर इन परिंदों की जुबान हमें समझ आने लगती और इन्हें हमारी। अगर ऐसा होता तो मैं इन सब को एक ही नाम रटा देती, वही जो मेरे दिल के सबसे करीब है, साहिल। फिर कोयल की कूक, गौरैये का गाना, सब इनका नाम दोहराते और मैं आंखें मूंदे बस सुनती रहती। मैं अपने ही ख्यालों पर हंसती, क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। मैं फिर ख्यालों में उलझती इससे पहले घंटी की आवाज़ आई। लेक्चर खत्म हो गया था। 10 मिनट बाद मैं और साहिल कैंटीन में बैठे थे। वो बस हंसे जा रहा था। दरअसल मैंने वो परिंदों वाली बात उसे बता दी थी। मौली, तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो, वो हंसते हंसते बोला। कोई बच्चों जैसी नहीं, खुद मैथ्स पढ़ पढ़कर बोरिंग हो गए हो। बोला था ना लिटरेचर ले लो, शायद किड्स और शैली पढ़ के तुम्हें रोमांस सीखना आ जाता, मैंने नकली गुस्से से कहा। तो वो बोला, अच्छा इतना बुरा हूँ मैं, इतना। इस बार मुझे हंसी आ गई, कैसी रोनी सूरत बनाई थी उसने। साहिल नहीं यार, ये चीटिंग है, तुम्हें बोलकर हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हो, कोई कंप्लेन ही नहीं करने देते। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। अच्छा पापा, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, मैंने कहा। वैसे भी आई लाइक बोर्डम, मैंने उधर उधर देखा और जल्दी से उसका गाल चूम लिया। मौली, आदत तुम्हारी कब सुधरेगी, साहिल हमेशा मेरी इस हरकत पर असहज हो जाता था। गॉड नोस, एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता, मैंने कहा और हम दोनों हंस पड़े। क्या बात है भाई, हमें भी सुना दो कोई जोक वोक। आवाज़ सुनकर हम पलटे तो देखें रिकी खड़ा था और साथ में उसके 3-4 चेले। रिकी हमारी ही नहीं, लगभग कॉलेज के हर स्टूडेंट की लाइफ का विलन था। पता नहीं क्या मिलता था इसे औरों को परेशान करके। ठीक है मत सुनाओ, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे, तब तो सुना दोगी ना मौली, उसने एकदम चेहरे के पास अपना चेहरा रखकर कहा। मन तो किया थप्पड़ जड़ दूँ एक, लेकिन साहिल ने कसकर मेरा हाथ पकड़ रखा था। आंखों से इशारा भी किया कि चुप रहूं। अरे ऐसे लोगों से उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके जाने के बाद साहिल ने कहा। मैं कसमसा कर रह गई। रिक्की चला गया था लेकिन हमेशा की तरह कुछ कैसैला सा घोल गया था मन में। प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है सिर्फ प्रकृति से बनी चीज़ों से, ना कि केमिकल से। और प्रकृति से बनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो भी 100% आयुर्वेद पे आधारित, आपको मिलेंगे सिर्फ प्रसाधक.com पे। प्रसाधक.com पे आपको मिलेंगे ढेरों ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नेचुरल और केमिकल फ्री। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा आपको मिलेगा एरोमाथेरेपी, बटर थेरेपी, ऑयल थेरेपी, सॉल्ट एंड शुगर थेरेपी और ढेरों कस्टमाइज गिफ्ट्स के ऑप्शंस। तो इतना सब सिर्फ एक स्टोर पर, तो चेक करना तो बनता है बॉस। तो मैंने तो चेंज कर लिया अपना सारा केमिकल प्रोडक्ट्स प्रसादक के 100% प्योर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप कब चेंज कर रहे हैं? शॉपिंग करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.prasadhak.com या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें shop.prasadhak PRASADHAK और घर लाइए प्रसादक के 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स को। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। साहिल से मेरी मुलाकात कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुई थी। वो BSc नॉन मेडिकल में था और मैं BA में एडमिशन लिया था। मुझे याद है वो दिन जब मैं ऑडिटोरियम में अपने दोस्तों के साथ एनुअल डे की स्पीच तैयार कर रही थी। मैंने स्पीच खत्म किया तो ऑडिटोरियम में किसी के तालियों की गूंजने की आवाज़ उठी। वो साहिल था, जाने कब से वहाँ खड़ा मुझे देख रहा था। उस दिन हम कैंटीन में साथ बैठे थे, थोड़ी बातें भी हुई। अच्छा लगा था मुझे उसका साथ, उसका जरा सा संजीदा लहजा, चश्मे के पीछे से झांकती गहरी आँखें, सब कुछ। अच्छे दोस्त बन गए थे हम। और सेकेंड ईयर तक आते आते कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। किसी औपचारिक प्रपोजल की भी जरूरत नहीं पड़ी। शायद एक दिल की बात दूसरा दिल बिना शब्दों के भी पढ़ लेता है। एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कितने सपने बुन चुके थे हम दोनों। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कहाँ से करनी है, फिर कैसी नौकरी ढूंढनी है, कैसे घर वालों को राजी करना है, सब कुछ सोच चुके थे हम। अपने इन्हीं ख्यालों में डूबी डूबी मैं कब घर पहुंच गई थी। स्कूटी पार्क करके चाबी को उंगलियां में घुमाते गुनगुनाती हुई भीतर चली गई। हॉल में बैठे माँ मुझे देखकर मुस्कुरा दी। आज शायद वो बैंक से जल्दी आ गई थी। मैं सोफे पर बैग फेंक कर वहीं पसरने वाली थी पर माँ बोली, नहीं बेटा मौली, उठो फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, फिर सोना आराम से बेड पर। माँ, मैंने कहा तो माँ मेरी नकल उतारते हुए बोली, मौली। मैं हंसते हंसते उठी और कमरे में चली गई। लौटी तो माँ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। शाम की कॉफ़ी और दिन भर की बातें, हम माँ बेटे का ये नियम कभी नहीं टूटता। माँ पता है आज क्या हुआ से शुरू हुई मेरी बातें दिन का हर छोटा किस्सा बताकर ही खत्म होती थी। और वो तेरा दोस्त साहिल, माँ ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा तो मैं थोड़ी असहज हो गई। कितने दिनों से घर नहीं आया वो, माँ बोली, इस संडे लंच पे बुला लेना। मैंने सिर्फ इतना कहा और कप के पीछे छुपा ली अपनी मुस्कुराहट, अपनी नज़रें। उसका नाम सुनते ही जो भीतर महसूस होता है वो चेहरे पे भी तो दिखता होगा ना। शायद सुर्ख हो जाती होंगी मेरी कनपटियाँ, शायद आँखों में सब साफ दिखने लगता होगा, वही सब जो मैंने अभी माँ को नहीं बताया था, अभी बताना भी नहीं चाहती थी। जानती थी माँ चाहे कितनी भी पक्की सहेली क्यों ना हो, इस बात पर तो शायद वैसे ही रिएक्ट करेंगी जैसे सारी माएँ करती हैं। वो शनिवार की शाम थी, मैं कॉलेज से लौटकर माँ के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कोई अननोन नंबर से मैसेज था, नहीं अननोन नहीं, रिक्की की तस्वीर लगी थी डीपी में, कोई वीडियो भेजा था उसने। मैंने प्ले किया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी और साहिल की वीडियो थी वो, लाइब्रेरी में एक दूसरे को किस करते हुए। नीचे लिखा था, वेट डियर, अभी फॉरवर्ड करता हूँ कॉलेज ग्रुप में और तुम्हारी माँ को भी। रिकी का कोई ऐसी वैसी हरकत करना मेरे लिए हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, शायद करना नहीं चाहती थी। मैं माँ के पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरा अंदर से बंद करके बार बार उस वीडियो को प्ले करके देखती रही। लाइब्रेरी के उस कोने में हम दोनों के इतने प्राइवेट मोमेंट को कैसे कैद कर सकता था वो? अगर उसने कॉलेज में सबको दिखा दिया तो, माँ को भेज दिया तो? मैं खुद माँ को जो बात बताने से डरती रही वो अगर इस तरह सामने आई तो मैं कैसे सामना करूँगी उनका, उनके सवालों का? न जाने कितने अंदेशों से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने साहिल को फ़ोन लगा दिया। हेलो, अभी तो बोल रही थी माँ के पास बैठी हूँ, अभी आ गई मेरी याद, वो मुझे छेड़ते हुए बोला। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी रुलाई फूट गई। साहिल, वो रिकी, वो वीडियो, मैंने रोते रोते साहिल को सारी बात बताई। वो वीडियो भी भेजी, उसका हाल भी मेरे जैसा ही था। कौन किसे तसल्ली दे, कौन किसकी हिम्मत बांधे, हम दोनों बुरी तरह डर रहे थे। साहिल का फ़ोन कटा ही था कि रिकी का एक और मैसेज आ गया। सदमे में हो जाने मन, रिकी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़, मैंने लिखा। फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा है, डिलीट करूँ भी तो कैसे? होप यू अंडरस्टैंड, उसका जवाब आया। ये तो साफ साफ ब्लैकमेल था। मैंने सारे मैसेजेस साहिल को फॉरवर्ड कर दिए। हम दोनों के अंदर गुस्सा था लेकिन उससे भी ज़्यादा डर और बेबसी। रिकी ने हमें सोमवार तक का वक्त दिया था। अगले ही दिन हम दोनों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी और सेविंग्स के पैसे मिलाकर उसके लिए नया मोबाइल खरीद लिया। मंडे को कॉलेज पहुँचते ही हम उसके पास चले गए। वो टेनिस कोर्ट में अपने दोस्तों के साथ बैठा था जो हर उसकी बात पर बेवजह हंसे जा रहे थे। हमें देखते ही वो सब चुप हो गए। साहिल ने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया और वो उसे उलट पलट कर देखने लगा। इसमें नया मॉडल भी तो आया है, चलो खैर कोई बात नहीं, पता नहीं होगा बच्चों को। कितने बेशर्म थे ये लोग। अब तो डिलीट कर दो वीडियो प्लीज़, मैंने कहा। लेट मी थिंक अबाउट इट, वो जेबों में दोनों हाथें डाले एकदम मेरे सामने खड़ा था, एकदम मेरे पास। तुमने जो कहा था हमने कर दिया तो अब? साहिल के बोलते ही वो मानो जैसे खींच गया, मेरी तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, यू नो व्हाट, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या करेगा वो? मैंने कसकर साहिल का हाथ पकड़ रखा था। एक खाली क्लासरूम में बैठे थे हम दोनों, एकदम उदास और हारे हुए। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इग्नोर करते हैं उसको, मैंने कहा। कॉलेज में सब जानते तो हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में, घर पे भी तो बताना होगा। क्या बोल रही हो तुम, साहिल खींचते हुए बोला। सब जानते हैं मगर प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, और घर पे बताना है इस तरीके से? सोचा है उनका रिएक्शन क्या होगा? सोचा है? आई एम श्योर नहीं सोचा होगा, वरना नौबत ही नहीं आती ये। साहिल ने मेरा हाथ झटक दिया। समझ रही थी मैं उसकी नाराजगी, पर साहिल ऐसे कब तक? आज फाइल बनाने को दी है, कल को कुछ और कहेगा। कोई और रास्ता है, साहिल ने पूछा। जवाब हम दोनों जानते थे। हम दोनों ने जैसे तैसे रिकी की वो मोटी सी प्रैक्टिकल फाइल बनाई, उसे देने गए तो उसने एक ढेर और थमा दिया, अपने दोस्तों की प्रैक्टिकल फाइल्स। मैं रात भर जागकर फाइल्स बनाती रही। माँ कई बार मुझे देखने आई, कभी मेरे लिए नूडल्स बनाकर रख जाती तो कभी कॉफ़ी। बहुत प्रेशर है क्या बेटा, वो पूछती तो मेरा मन करता कि उसे लिपट कर रोने लगूं, सब बता दूं उन्हें। करीब 2 हफ्ते गुजर गए थे, रिकी हमें परेशान करने का हर रोज़ नया तरीका खोज लेता। आज मैं और साहिल कॉलेज से निकले ही थे तो उसके एकदम मेरे सामने लाकर अपनी बाइक रोक दी और बोला, बैठो मौली, ड्रॉप कर दो तुम्हें। अब तक जो वो कर रहा था मैं बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन उसका ये कहना मुझे वो नज़र आया जो वो कर सकता था। मैं कांप गई उसकी उस बात सुनकर। एक रोज़ जब मैं और साहिल लॉन में बैठे थे, रिकी हमें कुछ दूर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वो अपने फ़ोन में उन्हें कुछ दिखा रहा था और वो सब हर 2 मिनट बाद हमारी तरफ देखते और ठहाके लगाकर हंसने लगते। कहीं वो उन सबको वो वीडियो, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठकर उसके पास चली गई। तुम जो कह रहे हो हम कर रहे हैं ना, फिर ये सब क्यों, मैंने गुस्से से कहा तो रिदी जोर से हंसने लगा। हम तो फनी वीडियोज़ देख रहे थे, तुम्हें क्या लगा? जैसे बहाना चाहिए था उसे मुझे डराने का, और कामयाब भी तो हो रहा था वो। उसका शातिर चेहरा दिन भर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। ज़रा सा फ़ोन बजता तो मैं घबरा जाती, लगता उसी का मैसेज होगा। साहिल भी पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखता तो मैं ठिठक जाती। रात को न जाने कितनी बार नींद टूटती, अजीब अजीब सपने आते, न पढ़ाई में मन लगता न कहीं और। आज लेक्चर के बाद मैं अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ जा रही थी। साहिल वहीं मेरा वेट कर रहा होगा। एक यही तो वक्त था जब दिल को थोड़ा सुकून मिलता था, थोड़ी राहत। मैं कॉरिडोर में मुड़ी ही थी कि मेरे सामने से रिकी आ गया। मैं उसे अनदेखा कर आगे बढ़ने लगी, पर उसने मेरा हाथ पकड़कर रोका और ज़रा सा करीब आकर बोला, किस मी। व्हाट, मैंने चौंकते हुए पूछा, हैव यू गॉन मैड? इतना क्या सोच रही हो यार, उसको कर सकती हो मुझे नहीं। देखा मैंने वीडियो में तुम कैसे, वो उसके आगे भी बोलता जा रहा था, मेरे कानों में चुभ रहे थे उसके शब्द। मैंने उसे धक्का मारा और वहाँ से भाग गई। लेकिन कब तक भाग पाऊंगी मैं? रात के 8 बज रहे थे। मैं बालकनी में लगे झूले पर उदास बैठी थी, याद कर रही थी वो दिन जब साहिल और मैं लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। साहिल किसी बात पर मुझसे नाराज था, सो मुझे देख कर भी अनदेखा कर रहा था। मैं कभी उसका किताब बंद कर देती तो कभी पेन छीन लेती। सॉरी ना बाबा, इतना कौन नाराज होता है, मैंने कहा था। मौली, पेन वापस दो, पहले ठीक से बात करो, मैंने फिर मुनहार की थी, मगर वो तब तक नहीं माना। उसने बैग से दूसरा पेन निकाला और वापस किताबों में नज़रें गड़ा ली थी। मैं रूहांसी सी हो गई थी। मैंने उसका पेन वापस किया और चुपचाप बैठ गई, चेहरा नीचे झुकाकर मेज पर माथा टिका लिया। कुछ ही पल गुजरे थे कि मैंने अपने हाथों पर साहिल के हाथों का स्पर्श महसूस किया। चेहरा उठाकर देखा तो वो बगल में बैठा था। इट्स ओके, ऐसे मुँह लटकाकर मत बैठो, उसने कहा था। मेरा उदास होना इतना बुरा लगता था उसे, इतनी फिक्र, इतना प्यार। मुझे अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मैंने लाइब्रेरी में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने दोबारा साहिल की तरफ देखा और उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। मौली, क्या कर रही हो, कहते हुए उसने हटाया था मुझे। वो कहा है ना किसी ने, इफ़ यू लव समबडी शो इट, सो आई एम शोइंग इट, जता रही हूँ अपना प्यार। पर मौली, कोई देख, अरे कोई नहीं देख रहा है बाबा, अब एकदम चुप, कहते हुए मैंने उसे फिर से करीब खींच लिया था। और बस वही सब न जाने रिकी ने अपने फ़ोन में कैद कर रखा था। प्यार दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है, और इसे जाहिर करने का तरीका सबसे खूबसूरत, फिर चाहे वो हाथ थाम लेना हो, गले से लगा लेना हो, या चूम लेना। नज़दीकी के उस एक लम्हे में हम खुद को रोक नहीं पाते, शायद रोकना भी नहीं चाहते। नहीं सोचते कि जगह कौन सी है, वक्त कौन सा है, और यही चूक कब मुसीबत में लाकर खड़ा कर सकती है हम नहीं जानते, जैसे मुझे और साहिल को किया था। यही सवाल सही गलत, नई सोच पुरानी सोच का नहीं है, सवाल है अपने सबसे सुंदर एहसास का, उस एक प्यारे से मोमेंट का। क्या कोई भी चाहेगा कि उस पल को पछतावे की तरह याद करना पड़े, रिक्की जैसे कोई उसको इस्तेमाल करके गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करे? काश मैंने उस साहिल की बात मान ली होती, इसे फॉर ग्रांटेड ना लिया होता कि कोई नहीं देख रहा है, काश। मैंने फ़ोन उठाया और साहिल को एक मैसेज कर दिया, साहिल अब एक ही रास्ता बचा है, मैं माँ को सब बता दूंगी, सब। मैंने आंखें मूंद कर सर पीछे झूले पर टिका लिया। कितना कुछ एक साथ घूम रहा था जहन में, वो दिन, रिकी की आज की घिनौनी हरकत, माँ का चेहरा और साहिल का साथ, जिसे मैं किसी हाल में नहीं खोना चाहती थी। मैंने साहिल से कह तो दिया था कि माँ को सब बता दूंगी, लेकिन अब खुद ही डर रही थी।
मौली कब से आवाज़ लगा रही हूँ?
माँ मुझे पुकारते हुए बालकनी में चली आई।
बेटा खाना ठंडा,
वो कहते कहते रुक गई, शायद देख लिया था उन्होंने मेरा उतरा हुआ चेहरा।
मौली क्या हुआ बेटा?
वो मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई मेरे पास बैठ गई। मैं उनकी तरफ देखी मगर कुछ नहीं बोल पाई। बचपन से लेकर अब तक माँ को सब बताया था, अपनी सहेलियों के किस्से, टीचर्स की बातें, अपने छोटे बड़े सीक्रेट्स, लेकिन जब प्यार की बात आई तो फिर ये डिस्कम्फर्ट क्यों था?
बेटा कोई बात है क्या, इतने दिनों से देख रही हूँ। माँ वो साहिल और मैं
किसी तरह हिम्मत जुटाकर माँ को अपने और साहिल के बारे में बता दिया, फिर रिकी के उस वीडियो के बारे में भी। मैं फूट फूट कर रो रही थी।
माँ मैं सब बता देती आपको, फिर ये सब, आई एम सॉरी माँ।
माँ ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं सिसकती रही देर तक। प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है सिर्फ प्रकृति से बनी चीजों से, ना कि केमिकल से, और प्रकृति से बनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो भी 100% आयुर्वेद पे आधारित, आपको मिलेंगे सिर्फ प्रसाधक.com पे। प्रसाधक.com पे आपको मिलेंगे ढेरों ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नेचुरल और केमिकल फ्री। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा आपको मिलेगा एरोमाथेरेपी, बटर थेरेपी, ऑयल थेरेपी, सॉल्ट एंड शुगर थेरेपी और ढेरों कस्टमाइज गिफ्ट्स के ऑप्शंस। तो इतना सब सिर्फ एक स्टोर पर, तो चेक करना तो बनता है बॉस। तो मैंने तो चेंज कर लिया अपना सारा केमिकल प्रोडक्ट्स प्रसादक के 100% प्योर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। तो आप कब चेंज कर रहे हैं? शॉपिंग करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.prasadhak.com या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें shop.prasadhak PRASADHAK और घर लाइए प्रसादक के 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स को। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। माँ मेरे सर को सहलाती हुई मुझसे कह रही थी, क्यों सहती रही बेटा? सिर्फ मुझे बताने के डर से?
जब शॉप शेयर करती हो तो वैसे ही बता देती ना।
माँ की बातें सुनकर कितने दिनों से मेरे मन पे जो बोझ लदा था वो हट सा गया था। हल्का महसूस कर रही थी मैं, और भीतर से थोड़ा मजबूत भी। मैंने माँ को रिकी के सारे मैसेज दिखाए। सब देखकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब तक तुम डरती रहोगी वो डराता रहेगा, जब तुम्हें पता है कि तुम अपनी जगह सही हो तो फिर डर किस बात का बेटा, अपना स्टैंड लेने में कैसी हिचक। माँ की इतनी सी बात में सारी प्रॉब्लम का हल छुपा था। इतने दिनों के बाद आज मैं चैन की नींद सो पाई थी। अगले दिन मैं और साहिल कॉलेज पहुंचे ही थे कि सीधा रिकी से सामना हो गया। हमें देखते ही वो बोला,
कैंटीन का बिल पे कर देना, वैसे याद तो होगा ही ना तुम्हें।
जब बिल दे नहीं सकते तो इतनी उधारी करना ज़रूरी है क्या, मैंने कहा। रिकी की मुठियाँ गुस्से में कस गई। तुम्हें पता है ना मैं क्या?
हाँ यार पता है, तुम्हारे पास एक वीडियो है और वो तुम सबको दिखा दोगे, सबको पता चल जाएगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में, यही सब ना।
सिर्फ रिलेशनशिप? सब बताओ ना, क्या कर रहे थे उस दिन, रिकी कसमसाते हुए बोला। मेरा दिमाग भन्ना गया। मैं दो कदम आगे बढ़ी और एकदम उसके पास जाकर बोली, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी तेज आवाज सुनकर आसपास काफी स्टूडेंट्स जमा हो गए। सही नहीं कर रही हो तुम, रिकी दांत भींचते हुए बोला।
और तुम, जो तुम कर रहे हो उसका क्या? ब्लैकमेल करना तो क्राइम होता है, क्या तुम सही कर रहे हो?
पता नहीं मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, शायद इतने दिनों की घुटन गुस्सा बनकर निकल रही थी।
मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीना और ज़मीन पर पटक दिया। दोबारा ऐसी हरकत की ना मेरे साथ या किसी और के साथ तो सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगी। इतने दिनों से जो डर मेरे और साहिल के भीतर था, आज वही मुझे रिक्की के चेहरे पर नज़र आ रहा था। आसपास जमा सारे लोग उसे ही देख रहे थे। उसने शर्म से चेहरा झुका लिया। उसे यूं देखकर अच्छा लग रहा था मुझे, सच कहूँ तो सुकून मिल रहा था। मैं उसे वहाँ खड़ा छोड़ क्लासरूम की तरफ चल दी। कुछ ही कदम चली थी कि साहिल मेरे बराबर आया और चलते चलते मेरा हाथ थाम लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक गॉड तुम मेरी ज़िंदगी में हो, मैंने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। यहीं तक थी ये कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया था प्रसाधक ने, तो prasadhak.com को ज़रूर चेक करें। मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलूँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।